पाठ चार, ख्रीष्ट यीशु का पहला आगमन। श्रीमती ई जी वाइट अपने दर्शन की बात कहती है कि जब यीशु मनुष्य का अवतार लेने वाला था तो मुझे स्वर्ग से उतारा गया। उस वक्त उसने अपने को नम्र बनाकर शैतान की परीक्षा का भी सामना किया। यीशु का जन्म के समय कोई तरक भरक नहीं था। वह गौशाला की चरणी में जन्मा, फिर भी इस दुनिया के मनुष्यों के जन्म से अधिक ही आदर ज्योतिषियों से पाया। स्वर्गदूत जब यीशु के जन्म की खबर देने गडेरियों के पास पहुंचे तो एक बड़ी ज्योति भी साथ आई। स्वर्गदूतों ने अपनी वीणाओं को बजाकर स्वागत के लिए महिमा के गीत गाए। उन्होंने बहुत जोश के साथ यीशु के जन्म को पतित मानव को बताया। वह इस पृथ्वी में आकर मनुष्यों के लिए मरकर सुख और शांति और अनंत जीवन लाएगा। ईश्वर ने पुत्र का आगमन को सम्मानित किया और स्वर्गदूतों ने उपासना की। जब उसका बपतिस्मा हुआ तो स्वर्गदूत ऊपर से उस पर छाया डाल रहे थे। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर आया और उजाला किया तो लोग बहुत आश्चर्य करने लगे। ईश्वर की आवाज उस वक्त सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। यूहन्ना को निश्चय मालूम नहीं था कि त्राणकर्ता बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जर्दन नदी में आया है। ईश्वर ने उसे पहचानने के लिए एक चिन्ह दिया था जिसे देखकर वह पहचान सके। वह चिन्ह तो यह था कि कबूतर आकर उसके सिर पर बैठेगा और चारों ओर महिमा का प्रकाश छा जाएगा। यूहन्ना ने अपने हाथ को यीशु की ओर इशारा करके कहा, देखो, मनुष्य का पुत्र जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने अपने चेलों को बतलाया कि प्रतिज्ञा का उद्धारकर्ता यीशु मसीह यही है जो जगत को बचाएगा। अपने काम के अंतिम समय में यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम लोग यीशु को देखो और उसके पीछे चलो, क्योंकि वह एक महान शिक्षक है। यूहन्ना का जीवन शुष्क था। वह निस्वार्थ के साथ साथ उदास भी रहता था। उसने रवरीस्त का पहला आगमन की सूचना दी, पर ताज्जुब, काम करने का अवसर नहीं मिला जिससे वह उसका आनंद नहीं पा सका। वह जानता था कि यीशु को जब अपने शिक्षक के रूप में बताएगा तो उसे मरना पड़ेगा। उसकी पुकार सिर्फ जंगल में ही सुनाई पड़ी। वह एकांत जीवन बिताता था। उसने अपने सांसारिक पिता का परिवार में न रहकर घर का सुख से वंचित रहा। अपना काम करने वह एकांत में चला गया। बहुत लोग अपना काम धंधा छोड़कर इसका उपदेश सुनने के लिए गांव घर से मरुभूमि की ओर चले। यूहन्ना ने यीशु का मार्ग तैयार किया था। उसने निडर होकर लोगों को बताया था कि पाप का क्या परिणाम होगा और ईश्वर का मेमना का मार्ग तैयार किया था। यूहन्ना का प्रभावशाली उपदेश से हेरोद डगमगा गया था। उसने बहुत इच्छुक होकर पूछा कि उसका चेला बनने के लिए क्या करना होगा। यूहन्ना को मालूम था कि वह हेरोद अपना भाई की पत्नी से शादी करना चाहता था। उसका भाई अभी जिंदा था और उसने कहा था कि ऐसा करना उचित न होगा। हेरोद इस पर राजी नहीं था। उसने अपने भाई की पत्नी से शादी कर उसके द्वारा यूहन्ना को पकड़कर जेल में डलवाया, पर हेरोद उसे छोड़ना चाहता था। जेल में रहते हुए यूहन्ना ने यीशु के बड़े बड़े काम के विषय सुने थे। उसने तो कभी यीशु के उपदेश नहीं सुने थे, पर चेलों ने उसे बतलाया था और उसे सांत्वना दिया था। इसके तुरंत बाद हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा को कत्ल करवा दिया। इसमें उसकी पत्नी का हाथ था। श्रीमती वाइट कहती है कि यीशु के थोड़े चेलों ने उसके उपदेश और शांति के वचन सुने। वे यूहन्ना बपतिस्मा के उपदेशों से अधिक प्रभावशाली थे। यीशु के वचन अधिक सम्मानजनक और ऊपर उठाने वाले थे। उनमें अधिक आनंद मिलता था। यूहन्ना एलिया नबी के आत्मा और शक्ति से यीशु के पहला आगमन की गवाही देने आया था। फिर एलन वाइट कहती है कि मुझे दर्शन में दिखाया गया है कि अंतिम दिनों का क्रोध के समय और यीशु का द्वितीय आगमन के पहले जो लोग संवाद सुनाएंगे तो ठीक एलिया की आत्मा और अधिकार का प्रयोग करेंगे। यीशु का बपतिस्मा होने पर आत्मा ने उसे जंगल में लिया, जहां शैतान से उसकी परीक्षा की। भयंकर तथा कठिन प्रलोभन और परीक्षा के समय पवित्र आत्मा उसके साथ था। यीशु बिना खाए पिए 40 दिन तक था। उसके चारों ओर का दृश्य बहुत ही खराब था, जिसे मनुष्य अंदाज लगा सकता था। उस निर्जन स्थान में यीशु जानवरों के साथ अकेला था और शैतान भी वहां पर परीक्षा करने के लिए तैयार बैठा था। एलन वाइट कहती है कि मैंने यीशु का चेहरा को पीला देखा और उपवास कर दुख सहने के कारण दुबला पतला भी देखा, पर वह तो ठहराया हुआ काम को करने आया था और उसे पूरा करना ही था। परमेश्वर के पुत्र की दुख तकलीफ का फायदा शैतान ने उठाया। उस पर विजय प्राप्त करने की आशा से उसने उस पर हर तरह की परीक्षाएं लाईं। क्योंकि यीशु ने मनुष्य का अवतार लिया था, अतः शैतान को आशा थी कि जैसा उसने आदम हव्वा को परीक्षा में गिराया था, वैसे ही इसे भी गिरा देगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खा लो। उसने यीशु को मसीह होने का प्रमाण देने का लालच देकर उसकी स्वर्गीय शक्ति प्रदर्शन करने को कहा। यीशु ने नम्र भाव से जवाब देते हुए कहा, लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से अकेला नहीं जीता है, पर हरेक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने संबंधी शैतान उससे तर्क करने चाहता था। उसने उसकी दयनीय स्थिति का गर्वपूर्वक चर्चा कर अपने को यीशु से बढ़िया साबित करना चाहता था। परंतु स्वर्ग से जो वचन बोला गया था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, वही यीशु के लिए दुख में धीरज धरने का काफी सहारा था। मैंने देखा कि यीशु अपने सारे कामों के दौरान अपनी शक्ति और पुत्र होने का परिचय शैतान को देना उचित न समझा। शैतान के पास यीशु जगत का उद्धार करता है इसका काफी प्रमाण था। उसके इस अधिकार को न मानने के कारण ही शैतान स्वर्ग से बाहर हुआ है। यीशु को उसकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए शैतान ने उसे यरूशलेम मंदिर की चोटी पर लेकर बैठाया और उसे वहां से नीचे डेगने कहा। इस बार शैतान पवित्र शास्त्र की बातों को बोलते हुए कहा कि लिखा है कि स्वर्ग दूतगण तुझे गिरने से बचा लेंगे, तुझे जमीन पर ठोकर खाने नहीं देंगे। यीशु ने फिर उसे उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। शैतान चाहता था कि वह अपने पिता की मदद व दया की आशा लगाकर अपना जीवन को खतरे में डालेगा और अपना काम पूरा करने नहीं सकेगा। उसे आशा थी कि उद्धार की योजना असफल हो, लेकिन योजना की नींव इतनी मजबूत थी कि शैतान को उसे उखाड़ फेंकना या बिगाड़ना कठिन था। मैंने देखा कि ख्रीष्ट सब मसीहियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बना जब वे परीक्षा में पड़ते हैं या विवाद में फंसते हैं। उन्हें धीरज धरे रहना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना काम कराने के लिए ईश्वर को आश्चर्य काम करवाना है। जब तक कोई विशेष उद्देश्य न हो और ईश्वर की महिमा प्रकट न हो, तो उसे आश्चर्य कर्म नहीं कराना है। यदि यीशु अपने को जमीन पर जबरदस्ती गिराता तो ईश्वर की महिमा नहीं होती। इसे स्वर्गदूत और शैतान को छोड़ कोई नहीं देखते। यीशु दुश्मन के विरुद्ध यदि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता तो वह परीक्षा में गिर जाता। यदि ऐसा होता तो यीशु को उससे समझौता करना होता, न कि अपना दुश्मन को हराना। शैतान उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठाकर संसार का सारा वैभव एक ही मिनट में दिखाकर बोला कि मैं ये सब तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे। यीशु ने शैतान को डांटते हुए कहा, हे शैतान, तू दूर हट जा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना न करना। शैतान ने यीशु को जगत का राज्य और उसका वैभव को दिखाया था, संसार को बहुत लुभावना ढंग से दिखाया था। यीशु को बोला, सिर्फ एक बार प्रणाम करने से ही मिल जाएगा, जगत में अपना अधिकार जमाना छोड़ देगा। शैतान को मालूम था कि उसकी शक्ति सीमित है और उसे छीना जाएगा जब उद्धार की योजना का काम पूरा होगा। मनुष्यों को छुड़ाने के लिए यदि यीशु मरेगा तो उसका अधिकार पृथ्वी पर समाप्त होगा और उसे मरना पड़ेगा। इसलिए वह यीशु को उसके काम से हटाने चाहता था। यदि हो सके तो उद्धार करने का एक बड़ा उपाय यीशु ने शुरू किया था, उसे शैतान को रोकना था। यदि उद्धार कराने का काम असफल होता तो शैतान का अधिकार जगत से नहीं उठता। यदि शैतान सफल होता तो यह कहकर झूठी बड़ाई करता कि मैं जगत में राज्य कर रहा हूं, ईश्वर नहीं। जब यीशु ने स्वर्ग की महिमा और अधिकार को छोड़ा तो शैतान बहुत खुश हुआ। वो सोचता था कि वो अब उसके कब्जे में आ जाएगा। आदम हव्वा को तो उसने बड़ी आसानी से ठग दिया और यीशु को भी बहुत आसानी से ठग कर अपना राज्य और प्राण को बचाने सोचा था। यदि वो यीशु को पिता की इच्छा के विरुद्ध चलाने में सफल होता तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता। यीशु ने शैतान से कहा था कि तू मेरे पीछे हट जा, उसे सिर्फ ईश्वर के सामने झुकना है। समय आ रहा था तब यीशु शैतान का सारा अधिकार छीन लेता और पृथ्वी पर के सब प्राणी उसके अधीन होते। शैतान ने दावा किया संसार का सब अधिकार उसके पास है और वो उसे यीशु को देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो उसे झुककर प्रणाम करे। इसके लिए यीशु को दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। पर यीशु अपने विचार पर अटल रहा। पिता ने इस राज्य को पाने के लिए यीशु को दुख तकलीफ सहकर मृत्युदंड भी पाने का उपाय किया था, इसलिए वो सहज से नहीं पर कठिनाई से राज्य पाना अच्छा समझा। वो उचित ढंग से जगत का उत्तराधिकारी बना। उसे इस पर सनातन का अधिकार मिला। शैतान को भी मार डालने का अधिकार मिला, जिससे वो भविष्य में यीशु को या किसी संत को भी न तंग करे। आधारित वचन लूका 2:31-22, मत्ती 4 अध्याय।